ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे रविवार के कार्यक्रम में। पिछले हफ्ते ही हम नरसिंह चतुर्दशी का महोत्सव मनाए और हमने सुना उस दिन की साधकों के लिए भगवान का ये अवतार कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम उनका गुणगान करते हैं तो हम कहते हैं भक्ति विघ्न विनाशक। हमारे भक्ति के विघ्नों को हरते हैं, विशेष रूप से भगवान नरसिंहदेव। और हमारी भक्ति को भगवान हरते हैं क्यों? तभी जब हम प्रह्लाद महाराज जैसे प्रामाणिक भक्ति करना चाहते हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि क्या प्रह्लाद महाराज के जीवन में हिरण्यकशिपु उनके पिता ने जो कुछ किया, क्या वो विघ्न था? प्रह्लाद महाराज की भक्ति में क्या वो विघ्न था? नहीं, क्योंकि प्रह्लाद महाराज उन विघ्नों को विघ्न वो देख ही नहीं रहे थे, उन विघ्नों को वो विघ्न मान ही नहीं रहे थे। अक्सर हमने इसकी चर्चा की है। नरसिंह पुराण में इसका वर्णन आता है कि प्रह्लाद महाराज को जब अग्नि में फेंका गया तो प्रह्लाद महाराज उस अग्नि को भगवान विष्णु की जिह्वा मान रहे थे, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है यज्ञो वै सह। जब भगवान के भक्त यज्ञ करते हैं तो वो जो अग्नि है यज्ञ की, वो अग्नि भगवान श्री विष्णु की जिह्वा है जिसमें आहुति दी जाती है। तो प्रह्लाद महाराज अग्नि को भगवान श्री विष्णु की जिह्वा देख रहे थे। जब उन्हें विष पिलाया गया तो वो ये देख रहे थे कि यही विष लक्ष्मी देवी के साथ पैदा हुआ समुद्र मंथन के समय, तो ये लक्ष्मी देवी का सहोदर हुआ विष। और सहोदर होने के नाते, क्योंकि लक्ष्मी देवी मेरी आराध्य माता हैं, तो लक्ष्मी देवी के सहोदर ये विष मेरा मामा हुआ। भाई ना, माता का भाई हो गया मामा। तो विष को वो अपना संबंधी मान रहे थे। जब गज उनके ऊपर चढ़ाया गया अर्थात हाथी, तो वो गजेंद्र की याद कर रहे थे कि एक गजेंद्र की रक्षा की थी मेरे आराध्य देव ने। तो इस प्रकार से इन सब विघ्नों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को प्रह्लाद महाराज ने बिल्कुल भी कठिनाई या परेशानी नहीं मानी। उनके लिए तो एक और मौका था भगवान को याद करने का, भगवान के कृपा को याद करने के अलग अलग मौके प्रह्लाद महाराज ढूंढ रहे थे। जैसे इंद्रिय भोगी अलग अलग मौके ढूंढता है इंद्रिय भोग करने के, वैसे ही प्रह्लाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त अलग अलग मौके ढूंढते हैं भगवान का स्मरण करने के लिए। इसलिए एक श्लोक में कहा गया है श्रीमद् भागवत के तात्पर्य में, श्री प्रभुपाद इसको वर्णित करते हैं कि भगवान नरसिंह देव अवतरित हुए हिरण्यकशिपु की रक्षा करने के लिए, क्योंकि प्रहलाद महाराज तो अपनी भक्ति के द्वारा रक्षित थे, परंतु हिरण्यकशिपु के अंदर कोई भक्ति नहीं थी। तो हिरण्यकशिपु के अंदर केवल एक ही गुण था कि हिरण्यकशिपु नित्य रूप से प्रहलाद महाराज का स्मरण किया करता था। जब उसे यह समझ में आ गया कि यह मेरा पुत्र विष्णु का गुणगान कर रहा है, मेरे शत्रु का गुणगान कर रहा है, तो हिरण्यकशिपु बहुत चिंतित रहता था। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई हरे कृष्ण आंदोलन में आना प्रारंभ करता है तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि ये हरे कृष्ण में तो जा, मंदिर तो जा रहा है लेकिन हरे कृष्ण के मंदिर में जा रहा है। बंबई में एक भक्त से मैं मिला, वो कह रहे थे कि वो जब बंबई के हमारे मंदिर में आना प्रारंभ किए तो उनके पिताजी इतने चिंतित हो गए कि उनके पिताजी उनको पैसा देने लगे ज्यादा कि बेटा तुम्हारी उम्र अभी डिस्को में जाने की है, तुम डिस्कोथेक में जाओ। तो अब ऐसे पिता किसी को मिलते हैं तो उसको तो प्रहलाद महाराज जैसा बनना ही होगा। तो वो क्या करता, बोलता हाँ ठीक है डिस्को में चलो। तो जो जो पैसे ले लेता और फिर मंदिर में आकर वो बुक्स, प्रभुपाद की किताबें खरीद कर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता डिस्कोथेक के सामने। झूठ भी नहीं कहा, डिस्को गया था, क्या किया लेकिन वहां पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण किया। श्रील प्रभुपाद की तो हिरण्यकशिपु वो नित्य रूप से प्रहलाद महाराज का चिंतन किया करता था। और इतना वो प्रहलाद महाराज एक शुद्ध भक्त महाजन, तो एक शुद्ध भक्त एक महाजन का इतना कोई चिंतन करेगा तो क्यों नहीं भगवान अवतरित होंगे उसके लिए। हमारा सिद्धांत क्या है कि हमें शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करनी है। और यहां पर हिरण्यकशिपु वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से ज्यादा प्रहलाद कॉन्शियसनेस में था, प्रहलाद भावनामृत। तो भगवान का हृदय पिघल गया और भगवान जानते भी थे कि ये मेरे ही पार्षद हैं, जय विजय में से एक है ये। और भगवान जब हिरण्यकशिपु का उद्धार कर रहे थे तो भगवान हिरण्यकशिपु को ये कह रहे थे कि तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला तुम्हें, इसलिए मैं अपने आप को याद दिलाने आया हूं तुम्हारे समक्ष। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे ये भगवान ही स्वयं जानते हैं। अंततः भगवान चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, भगवान सबकी रक्षा करते हैं, परंतु भक्तों की रक्षा विशेष रूप से भगवान बहुत ही अनोखे ढंग से करते हैं। और हमें कई बार उस समय समझ में नहीं आता कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं या हमें छोड़ दिए हैं इस भौतिक संसार में माया देवी के अधीन। तो इसलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत ही दिलचस्प ये शीर्षक है, भगवान द्वारा पांच प्रकार की सुरक्षा। अब हम जब भक्ति में लगते हैं तो अलग अलग कारण होते हैं हमारे भक्ति में लगने के। हम भक्ति में लगते हैं इस आशा से कि भगवान श्री कृष्ण मेरी सहायता करेंगे मुझे उनके प्रति प्रेम जागृत करने में, मेरे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, आध्यात्मिक जीवन में मैं आऊंगा तो जो अलग अलग मैंने कुकर्म किए हैं वो सारे कुकर्म धुल जाएंगे। तो कोई भय के कारण, कोई आशा के कारण, कोई कर्तव्य के कारण, कोई प्रेम के कारण भगवान को शरणागत होता है, भगवान के संपर्क में आता है। अब भगवान ऐसे हैं कि भगवान सबके संपर्क में है, हम भूल जाते हैं कि हम उनके संपर्क में हैं। भगवान हर समय सबके संपर्क में रहते हैं और आ आकर भगवान याद दिलाते हैं कि कैसे मैं तुम्हारे संपर्क में हूं। हम सबको याद दिलाते हैं भगवान, जितने सारे अवतार भगवान लेते हैं, भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने ग्रंथों को भेजते हैं, अपने नाम के रूप में आते हैं, धाम के रूप में, प्रसाद के रूप में। केवल भगवान यही याद दिला रहे हैं कि याद करो मेरे साथ आध्यात्मिक संसार में तुम थे और तुम जा सकते हो फिर मेरे साथ। और कई बार जब हमें याद नहीं आता, फिर भी भगवान आने के पश्चात भी जब हम याद नहीं कर सकते तो भगवान अन्य सूत्रों के द्वारा फिर हमें याद दिलाते हैं। येन केन प्रकारेण, भगवान बस यही इच्छा रखते हैं कि हम उनका स्मरण करें, शुद्ध हों और उनके धाम वापस लौटें। तो इस भौतिक संसार में हमारी स्थिति ऐसी है, क्या दिख रहा है यहां पर? चूहा कौन है? हम, एक बद्ध जीव। और भगवान की जो शक्ति है वो इस बिल्ली के समान है जो इस चूहे को अपने जबड़े में पकड़े हुए है, या मृत्यु। अब इस भौतिक संसार में लोग मृत्यु से कितना डरते हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, इसलिए क्या कुछ लोग नहीं कर रहे। तो ये उदाहरण दिया गया है कि एक भौतिकतावादी मनुष्य, उसके लिए मृत्यु एक बिल्ली के जबड़े के समान है, परंतु वो कौन है? वो है चूहा। तो चूहे के लिए बिल्ली का जो जबड़ा है वो मृत्यु रूप है, परंतु वही जब भक्त बनता है तब वही बिल्ली, वही जबड़ा और ये मुख में अब किसे लिए है? अपने बच्चे को। तो भक्त के लिए वही जबड़ा अब सुरक्षा का एक स्रोत बन जाता है, मृत्यु या वो बिल्ली का वही जबड़ा सुरक्षा का स्रोत बन जाता है। तो हमें हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार का बनाना है हमारी कृष्ण भावना के द्वारा कि इस भौतिक संसार में रहते हुए हम इन भौतिक संसार की जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसे हम किस तरीके से देखें, किस दृष्टि से देखें, चूहे की दृष्टि या बिल्ली के बच्चे की दृष्टि। भक्ति चारू महाराज वो एक बार अपने एक प्रवचन में उदाहरण दे रहे थे कि छोटे बच्चे को जब पिता अपने गोद में लेता है और कई बार ऊपर फेंकता है, उसे हर्षित कर खिलाने के लिए जब ऊपर फेंकता है। तो जब पिता बच्चे को ऊपर फेंकता है तो पहली दफा जब फेंकता है तो बच्चा थोड़ा सकपका जाता है, भौचक्का रह जाता है कि यह अचानक मेरे पिता को हुआ क्या, फेंक क्यों रहा है मुझे, पैदा क्यों किया था। तो जब बच्चे को पहली बार ऊपर वो पिता फेंकता है तो बच्चा वो भ्रमित हो जाता है, कंफ्यूज। और जब वो हवा में ऊपर रहता है तो एकदम डर जाता है वो, उसका चेहरा देखो तो उसकी आंखों में डर, क्योंकि अभी हवा में है और पिताजी हाथ ऐसे ऐसे कर लेते। पिताजी ने हाथ भी नीचे कर लिया, ऊपर भी छोड़ दिया मुझे। और फिर जब वो नीचे गिर रहा होता है तब पिताजी अचानक हाथ लेकर उसे पकड़ लेते, तब फिर क्या दिखता है, मुस्कुराहट। He has a broad smile. बहुत अच्छा लगा, वापस करो। फिर वो वापस पिताजी ऐसे। तो ये सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया और वो कह रहे थे कि कई बार भगवान श्री कृष्ण भी हमको ऐसे ही खिलाते हैं भक्ति में, तो कभी फेंक देते हैं ऊपर और हम डर जाते हैं कि पता नहीं मैं आगे भक्ति कर पाऊंगा कि नहीं, अगले दिन मैं भक्त रह पाऊंगा कि नहीं, ये इतनी सारी भौतिक इच्छाएं और ये प्रकृति का जो प्रकोप है। तो हमारी अवस्था क्या है कि अब तक हवा में हम, और फिर उस समय थोड़ा विश्वास हल्का रहता है कि भगवान हाथ ऊपर करेंगे कि नहीं पकड़ने के लिए, नहीं करेंगे तब तो मेरा पतन हो गया, तब तो मैं तो यहां का न वहां का। परंतु जब भगवान पकड़ लेते हैं तब फिर जान में जान आती है, हाँ अब भी मैं भगवान कृष्ण का ही भक्त हूं, अभी भी याद है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब तक फिर वो याददाश्त बनी रहती है। तो हमारी भक्ति में ऐसा अनुभव होता है, ऊपर फेंका जाना, थोड़ा डर, फिर बाद में भगवान पकड़ लेते हैं। तो कई बार हम लड़खड़ा के गिर जाते हैं भक्ति में, फिर खड़े होते हैं, फिर खड़े होते हैं बोला बस कल से मंगल आरती रोज, बहुत हो गया अभी। फिर कोई प्रवचन सुन लेते हैं कि मृत्यु रूपी सर्प कभी भी डस लेगा, फिर अचानक पेपर में भी पढ़ लेते हैं एक्सीडेंट, इतने लोग मर गए ट्रेन में, प्लेन में, ट्रेन में, चलते चलते यहां वहां, बस कल से मंगल आरती। फिर भगवान उठने से पहले उठ जाते हैं 3:30 बजे और एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहा धो के जोर जोर से हरे कृष्णा जोर जोर से। फिर 1-2 दिन 3-4 दिन बाद फिर जब पेपरों में कोई खबर नहीं आई, लेक्चर भी कोई ऐसा सुना कि केवल कृष्ण लीला, कोई फिलॉसफी नहीं, तो फिर लगता है क्या है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए। फिर हम फिलॉसफी झाड़ते हैं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इतने इतने तेज भी नहीं दौड़ना चाहिए, तो बहुत जोर से सर के बल गिरेंगे नहीं तो। तो ये इसको कहते हैं घन तरला, ये एक अनर्थ है घन तरला। कई बार हमारी भक्ति एकदम घनघोर होती है और कई बार एकदम तरल, दिखती भी नहीं इतनी तरल। तो जब हम भगवान पर विश्वास करने की बात या श्रद्धा की बात कर रहे हैं तो ये एकदम प्रथम ये सीढ़ी है भक्ति की, श्रद्धा। और फिर श्रद्धा के पश्चात है साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, तत्पश्चात जो कुछ। तो भगवान पर हमारी कितनी श्रद्धा है कि भगवान हमारी सुरक्षा हर कदम पर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब बहुत विकट परिस्थिति आएगी तभी भगवान को याद आएगा, अरे 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 इसको इसकी मदद करनी है मुझे। भगवान हर परिस्थिति में, हर हमारे कदम में भगवान हमारी सुरक्षा के लिए पहले से, हमसे पहले से तैयार रहते। तो फिर ये सुंदर उदाहरण महाभारत में दिया गया है कि भगवान हमारी सुरक्षा करते हैं जैसे पलकें आंखों की सुरक्षा करती हैं। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि अक्सर पलकें दिखती भी नहीं, हमको स्वयं तो कभी दिखती भी नहीं, पलकों को भी देख सकते हो आप, बंद करना होगा ना आंख, आंख बंद करनी होगी, आंख बंद करोगे तो आईना भी सामने होगा तो पलकें कैसे दिखेंगी। पलकें ही बोलते हैं ना, आईलिड्स। इसलिए प्रवचन में जो जो वक्ता होता है उसे बहुत पलकें दिखती हैं। तो ये देखिए, गुणगान होता है आंखों का, और आंखें हमें कितनी सहायता, हमारी आंखें हमें करती हैं हर पग पर, आंखों की वजह से हम देख पाते हैं क्या कुछ नहीं कर पाते। और ये जो पलकें हैं, जब कठिनाई आए आंखों में तुरंत ये पलकें सामने आ जाती हैं आंखों की सुरक्षा के लिए। यदि कोई तिनका आंखों में डाल रहा है तो पलकें तुरंत आगे आ जाएंगी कि पहले मेरे से पास होगा ये तिनका, आंखों में नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडवों की रक्षा, अपने भक्तों की रक्षा, विशेष रूप से अर्जुन की रक्षा महाभारत में जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, वैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। केवल हमें इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ भगवान हैं हमारी रक्षा करने हेतु। तो आज हम ये पांच प्रकार की भगवान की रक्षा कौन कौन सी है इस पर चर्चा करें। पलके खुली है ना। सर्वप्रथम अज्ञान से रक्षा, तत्पश्चात त्रुटि रक्षा, अनर्थ रक्षा, व्यसन रक्षा और शत्रु रक्षा। तो भगवान कैसे हमारी साधना भक्ति में ये सारे जो अवरोध हैं, इन अवरोधों से हमें कैसे बचाते हैं भगवान, बहुत ही भगवान का विशेष प्रयोजन रहता है अपने भक्तों को अलग अलग प्रकार से। कोई अज्ञान द्वारा पीड़ित है, कोई त्रुटि किसी के अंदर है, अनर्थ किसी के अंदर है, व्यसन कोई शत्रु के द्वारा पीड़ित है, और कई बार तो पांचों द्वारा पीड़ित। तो भगवान कैसे उनकी रक्षा करते हैं। अब अज्ञान रक्षा, इसमें उदाहरण है ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज, उन्होंने भगवान की जो भक्ति की, तपस्या की, उसमें उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि शुद्ध सत्व में स्थित हैं उनकी भक्ति कर रहा हूं। उन्हें केवल एक ही ज्ञान दिया गया था उनकी माता द्वारा कि यदि तुम्हें राज्य चाहिए ब्रह्मा जी से भी ऊंचा तो विष्णु की भक्ति करो, यही ज्ञान था। अब देखिए, हम जब इस्कॉन में आते हैं तो हमें यह नहीं सिखाया जाता कि आप हरे कृष्ण जप कीजिए और आपको बिरला से भी बड़ा मकान मिलेगा, यह तो नहीं बताया जाता ना। तुरंत हमें बताया जाता है क्या कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर, उल्टा कई बार भक्त थोड़ा और ज्यादा बोल देते हैं कि जो कुछ आसक्ति है आपके अंदर, आपके घर के प्रति, परिवार के प्रति, सब कुछ छूट जाएगी। तो पहली बार आया है क्या? हाँ, सब कुछ एकदम मुक्त हो जाओगे, सबसे मुक्त हो जाओगे, नौकरी से मुक्त, आपके परिवार से मुक्त, पत्नी से मुक्त, माता पिता से मुक्त, सबसे मुक्त। तो वो बोलते हैं आपसे भी मैं मुक्ति लेता हूं अभी। एक हमारे मुंबई में एक भक्त बता रहे थे, एक विद्यार्थी नया नया आया, वो प्रोग्राम वगैरह अटेंड किया, एक दो लेक्चर ही अटेंड किया था, और बस एक दो लेक्चर अटेंड करते ही उसको साक्षात्कार हो गया कि मैं तो पूर्ण रूप से माया में हूं। और फिर घर गया तो उनकी जो माता थी वो उनको कुछ परोस रही थी, तो ये क्या दिया है, ये पाप है, उनको कुछ खाने के लिए, ये तो पाप है। बोले क्या? तो मुझे, अरे मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हें पाप खिलाऊंगी? आप मां नहीं, आप माया है। तो अब वो रोने लगी, तो उनके उनके जो पिताजी आए तो उनको शिकायत की, तो उनके पिताजी आए तो पिताजी क्या चल रहा है ये? तो कहते हैं आप मेरे पापा नहीं, आप पाप हैं। तो ये सब अज्ञान है, ये सब कुछ हमारे भागवत का सिद्धांत नहीं है। तो ध्रुव महाराज, उन्होंने भगवान की भक्ति की कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा राज्य उन्हें मिलना चाहिए। और जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज भगवान को देखने के पश्चात वो इतना आश्चर्यचकित हो गए कि उनके मुख से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था, कोई प्रार्थना निकल नहीं पा रही थी। तब भगवान ने जो शंख है भगवान का, भगवान चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए, शंख चक्र गदा पद्म, तो अपने शंख को भगवान ने ध्रुव महाराज के माथे पर स्पर्श किया। और जैसे ही ध्रुव महाराज के माथे पर भगवान ने अपना शंख स्पर्श किया, ध्रुव महाराज ज्ञान से परिप्लुत हो गए। कौन से ज्ञान से? भक्ति के ज्ञान से। और वो 5 वर्ष ध्रुव महाराज, जिन्होंने कभी कोई भागवत क्लास अटेंड नहीं की, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, वो ऐसी ऐसी प्रार्थना बोलने लगे, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन है, अलंकारी ढंग से प्रार्थना बोलने लगे। कैसे? क्योंकि भगवान ने अज्ञान से उनकी रक्षा कर उनको ज्ञान दिया। 11वें स्कंद में एक सुंदर श्लोक में यह है प्रसंग, जब नव योगेंद्र वो महाराज निमि से मिलते हैं, तो नव योगेंद्र वो महाराज निमि को एक सुंदर श्लोक में भक्ति की महिमा क्या है, कृष्ण भक्ति की महिमा क्या है वो सुनाते हैं। यनास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित, धावन निमिल्यवा नेत्रे न स्खलेत न पथेत इह। वो कहते हैं कि ये भक्ति का जो पथ है ये एक हाईवे के समान है, जैसे बॉम्बे पुणे का है ना एक्सप्रेस हाईवे। तो ये एक हाईवे के समान है भक्ति का ये पथ, और इस पथ पर जो साधक आ जाए और चलना प्रारंभ करे, तो नव योगेंद्र कहते हैं कि धावन यदि वो भागे भी, और कैसे, आंखों में पट्टी बांधकर, धावन निमिल्य वा नेत्रे, कि आंखों पर पट्टी बांध दी गई है उसके, और उसे कहा गया है कि भागो। कल्पना करो कि आंखों पर पट्टी बांधकर हम दो कदम भी निर्भयता से नहीं ले पाएंगे, कितना डर बना रहता है कि पता नहीं कहां गिर जाऊं। मान लो पूरा टेंपल हॉल खाली भी हो जाए और सब लाइट बंद कर दें, आंखों पर पट्टी बांधकर हमें कोई कहे कि यहां से वहां चलो, तो कितना अंदर डर बना रहेगा। यहां पर कहा गया भागते हैं, वो साधक यदि भागे भी तो भी नस्खलित, न तो वो लड़खड़ाकर गिरेगा न पतित होगा, नस्खलित न पतित इह, क्योंकि ये जो भक्ति का हाईवे है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आंखों में पट्टी बांधकर वो साधक यदि भागे भी तो कोई बीच में अवरोध नहीं आएगा जहां जिसके वजह से वो गिरेगा या पतित होगा। तो अब तात्पर्य में लिखा गया है कि ये जो दो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी, धावन निमिल्य वा नेत्रे, इसका अर्थ क्या है? ये जो दो आंखें हैं इसकी तुलना की गई है श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र से। अर्थात जब कोई भक्ति में आ जाता है तो यदि उसने श्रुति और स्मृति किसी भी शास्त्र को नहीं पढ़ा हो, कोई भी शास्त्र का ज्ञान उसे न हो, परंतु भक्ति के पथ में उसे श्रद्धा है, तो वो अवश्य ही अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा, भगवत धाम पहुंचेगा। तो अब ये हम अक्सर सुनते हैं कि जिसने भगवान का नाम, यद जिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसने भगवान का नाम एक दफा ले लिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तेपुस तपस्ते जुहुवु सश्नुनार्य ब्रह्माणुचूर नाम गृहंती एते, उसने भगवान का नाम अपने जिह्वा पर एक दफा ले लिया, अर्थात उसने सारे शास्त्रों को पढ़ रखा है, सारे तीर्थ यात्रा में जा चुका है, और जितने यज्ञ अनुष्ठान सब कुछ तपस्या आदि सब कुछ उसने कर दिया, भगवान का नाम उसके जिह्वा पर आ गया। तो यहां पर जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर पा रहे हैं इस कृष्ण भक्ति में, तो हमें क्या समझना चाहिए कि भगवान ने हमारी रक्षा कर ली है, अज्ञान रक्षा। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मुझे कोई बहुत बड़ा विद्वान पंडित बनना है भगवान को प्राप्त करने के लिए। नहीं, भगवान ने जैसे ध्रुव महाराज, अब ध्रुव महाराज भगवान का दर्शन ध्रुव महाराज को हुआ, कितने वर्ष के थे वो? 5 वर्ष के थे। उसके पश्चात ध्रुव महाराज, उनको जो ध्रुव लोक दिया गया, तो ध्रुव लोक पर राज्य ध्रुव महाराज ने कितने वर्ष किया? 36,000 वर्ष। इससे यह समझ में आता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि भगवान का दर्शन भी हो जाए तो उसके पश्चात भगवान क्या कहते हैं? अब सेवा करो। तो ध्रुव महाराज ने सेवा की 36,000 वर्ष। कई बार लोग ये कहते हैं, मुझे तो दर्शन होते हैं, हरि के दर्शन होते हैं, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं और कुछ करने की, हरि के दर्शन होते रहते हैं मुझे। जैसे हमारी जो दादी थी वो एक बार बता रही थी कि उनको कृष्ण का दर्शन हुआ। तो हमने पूछा, अच्छा कैसे? तो कह रही थी कि वो कुंभ मेला में कहीं गई थी अपनी बेटी के साथ, तो कोई पुरुष उनके साथ नहीं था, तो इतनी भीड़ थी और ट्रेन छूट गई। तो ट्रेन छूट गई तो अब वो भगवान का नाम लेने लगी, तो भगवान का नाम ले तो उन्होंने कहा कि भगवान आए, मेरी गठरी उठाई और मुझे भी उठाकर ट्रेन में बिठाए। अच्छा, तो कैसे दिख रहे थे? हाँ, मोर मुकुट धारण किए थे, पीतांबर, बांसुरी यहां बगल में दबाए हुए। तो फिर जो उनकी पुत्री थी, मना मेरी बुआ, उन्होंने कहा कि नहीं 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 वो बगल में वो एक नाटक कंपनी से उसने देखा, वो कृष्ण का रोल कर रहा था, तो उसने देखा कि ये लोग ट्रेन इनकी जब छूट गई है और इनको ऊपर चढ़ाना है, तो वो भाग के आया, तो वैसे ही भाग के आ गया वो। तो इनको लगा कि कृष्ण स्वयं आए साक्षात, मोर मुकुट धारण किए पीतांबर। उनको पूछो तो उनको भी पता नहीं लगेगा कि मोर मुकुट और पीतांबर क्या होता है जिसने धारण किया था। तो कई बार लोगों को लगता है कि हरि दर्शन मुझे देते हैं इस प्रकार से। तो ध्रुव महाराज, उन्होंने 36,000 वर्ष भगवान की सेवा की, भगवान ने उनको कहा करने के लिए, और उसके पश्चात फिर वैकुंठ विमान आता है। तो जब वैकुंठ विमान आता है, नंद और सुनंद वैकुंठवासी ध्रुव महाराज को ले जाने के लिए, तो ध्रुव महाराज फिर सकपका जाते हैं। सोचिए, 36,000 वर्ष भक्ति करने के पश्चात ध्रुव महाराज फिर थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनको दंडवत कैसे करूं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि क्या करूं, आओ भगत इनकी कैसे करूं, इनका आदर सत्कार मैं कैसे करूं, दंडवत करूं या इन्हें बिठाऊं पहले, या पहले मैं दंडवत करूं, क्या करना चाहिए? तो ध्रुव महाराज एकदम कंफ्यूज। उस समय ध्रुव महाराज को याद आता है कि जब भ्रमित अवस्था में कोई होता है साधक, तो उस समय केवल भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम लिया, अनुसंकीर्तनम यत, भगवान का नाम लेते ही फिर जो भी कंफ्यूजन था उनके अंदर वो सब कुछ दूर हो गया, सब भ्रम दूर हो गया। तो यहां पर भगवान, देखिए, जब भगवान के शरणागत कोई होता है, भगवान के नाम के शरणागत कोई होता है, तो भगवान स्वयं कहें, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम। परंतु हम ददामी बुद्धि योग चाहते हैं पहले, लेकिन वो लाइन पहली लाइन नहीं उस श्लोक की। पहली लाइन क्या है? सतत युक्तानाम, सतत कीर्तन जो करता रहेगा, भगवान उसे अंदर से ज्ञान देते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज ने तुरंत जब भगवान का नाम लिया, तो तुरंत भगवान वहां पर नाम के द्वारा ज्ञान प्रकाशित किए उनके हृदय में। इसलिए श्रील प्रभुपाद वो अपने शिष्यों को ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहते थे। जैसे हमारे एक बंबई के भक्त, उन्होंने पंकजांगरी प्रभु को एक प्रश्न पूछा कि मन को काबू में कैसे किया जाए। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता ना, साधारण प्रश्न है ना, मन को काबू में कैसे किया जाए। तो पंकजांगरी प्रभु कहते हैं, आप भक्त हो या योगी हो, आर यू अ डिवोटी और आर यू अ योगी? तो ये थोड़ा और कंफ्यूज हो गए, ये कहे प्रयास कर रहा हूं भक्त बनने का। तो उन्होंने कहा, पंकजांगरी प्रभु ने कहा, इफ यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल योर माइंड, देन यू आर ट्राइंग टू बिकम अ योगी, अ योगी ट्राइज टू कंट्रोल द माइंड। A devotee surrenders the mind to Krishna. तो प्रभुपाद अपने भक्तों को यही सिखाया करते थे. इसलिए प्रभुपाद को जब एक बार एक व्यक्ति ने चैलेंज किया कि आपके भक्त कितना शास्त्र जानते हैं, कितना संस्कृत जानते हैं, तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों की तरफदारी लेते हुए प्रभुपाद ने कहा कि माय डिवोटीज, माय डिसाइपल्स, दे माइट नॉट बी परफेक्ट बट दे आर सिंसियर. जैसे प्रभुपाद ने एक बार कहा था कि माय डिसाइपल्स दे माइट नॉट बी गुड एट प्रोनंसिएशन बट दे आर वेरी गुड एट रनंसिएशन. तो अज्ञान से रक्षा भगवान तब करते हैं जब हम ध्रुव महाराज, जब हम प्रहलाद महाराज, जब हम प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान हमें वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीलो, गाते ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशीलो, प्रकाशित होता है वो दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में और हमें भी समझ में नहीं आता. कई बार जब भक्त प्रचार में लगता है तो उस प्रचारक को समझ में नहीं आता कि वो कैसे प्रचार कर पा रहा है. और जैसे ही वो व्यासासन से उतरता है तुरंत बोलती बंद हो जाती. जैसे व्यासासन पे चढ़ा, माइक सामने आया तो धुआंधार. क्योंकि यदि वो प्रामाणिक है, भगवान से प्रार्थना करता है, यहां तक कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे आचार्य जो कि जिनको कहा गया था ही वॉज अ रे ऑफ विष्णु, तो उन्होंने अपने एक शिष्य भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज को कहा कि नोट्स लिखो, मैं जो प्रवचन दे रहा हूं उसके नोट्स लिखो. तो पहली बार, अब ये कभी नोट्स वगैरह लिखते नहीं थे, तो इनको कहा गया नोट्स लिखने के लिए पहली बार. अभी ऐसा कोई जो प्रचारक है ऐसे थोड़ी कहेगा लिखो नोट्स लिखो. तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, ये क्या कह रहे हैं नोट्स, लिखते गए लिखते गए. और पूरे प्रवचन के पश्चात फिर उन्होंने वो नोट्स मांगे और उन्होंने उनसे कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मैं खुद नहीं जानता था कि मैं आज क्या बोलने वाला हूं. दीज वर्ड्स वर नॉट माइन, कृष्णा वॉज स्पीकिंग थ्रू मी, सो आई वॉन्टेड, इट वॉज हिज डिक्टेशन. नाउ शो मी द नोट्स. वो इतनी समाधि में चले गए थे कि उनको ध्यान में नहीं आ रहा था कि वो बोल रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा बुलवा रहे हैं. इसलिए जब उन्होंने उसी प्रवचन के नोट्स को पढ़ा तो वो कहे कि ये मेरा प्रवचन नहीं था, आई वॉज जस्ट अ माउथ पीस, मैं तो खाली एक प्लेयर था, कैसेट तो भगवान का था अंदर, है ना. तो भगवान दिव्य ज्ञान अंदर से प्रकाशित करते हैं और हर क्षण में कि हमें हमारी भक्ति में अग्रसर होना है. तो अक्सर भक्त आते हैं कि क्या करना चाहिए, अभी आजकल मेरा बॉस मुझ पे बहुत चिल्लाता है, क्या करूं, नौकरी छोड़ दो, उसको थप्पड़ मारो. आजकल मेरी ट्रेन 15 मिनट लेट आ रही है, क्या करूं. जैसे कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं साधकों के कि हंसी आती है कि शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए जब आपको ऐसा बॉस मिलता है तो, या आपको ऐसी पत्नी मिलती है, ऐसा पति मिलता है, या ऐसा बच्चा मिलता है. अब ऐसा नहीं कि उन्होंने सुना नहीं, सुना है, सब कुछ सुना है, परंतु फिर भी. तो अक्सर होता क्या है कि जब हम, जैसे एक बंबई में एक डिवोटी वो प्रोग्राम में आना शुरू किए थे, हालांकि बाद में वो बहुत अच्छे भक्त बने, ब्रह्मचारी भी वो हैं, तो वो मुझे कहते थे कि ये लोग प्रश्न क्यों पूछते हैं। मैंने कहा मतलब प्रश्न पूछना ही क्यों है? अरे केवल भगवान का नाम लो, सब उत्तर मिल जाता है। और उनका ये बहुत दृढ़ साक्षात्कार था, मुझे भी लग रहा था कि हाँ इस भक्त को इतना विश्वास है भगवान के नाम पर, और उस भक्त ने आज तक कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा। उसने कहा मुझे जो भी प्रश्न उठे मैंने भगवान का नाम लिया और मुझे उत्तर मिल गया, परंतु शुद्ध तरीके से भगवान का नाम लिया जाए। तो अज्ञान के द्वारा रक्षा भगवान किस प्रकार से करते हैं, इसके पश्चात त्रुटि रक्षा। और त्रुटि रक्षा, त्रुटि समझते हैं आप, त्रुटि किसे कहते हैं? गलती। तो गलतियां होती ना भक्ति में हमसे, होती होती कि नहीं? गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। तो जब गलतियां होती हैं, इसमें उदाहरण है बलि महाराज। बलि महाराज वो उन्होंने कौन है? वामन देव को बलि महाराज कहते हैं कि हां तीन पग भूमि। और फिर वो तीन पग भूमि पूरी नहीं हुई तो एक प्रकार से उनसे त्रुटि हो गई। अब सोचिए बलि महाराज के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। वो एकदम प्रामाणिक कर्मकांडी थे, वो ही वॉज अ बोनाफाइड ऑथेंटिक स्मार्थ ब्राह्मण। तो शुक्राचार्य, वो सोचिए शुक्राचार्य ये श्लोक बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद में। शुक्राचार्य कहते हैं मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम देश कालहार वस्तुत सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। ये शुक्राचार्य बोल रहे हैं ये श्लोक बलि महाराज को। वो कहते हैं मंत्रतस तंत्रतस छिद्रम, कि आप के मंत्र उच्चारण में और अलग अलग प्रकार के तंत्र करने में यदि छिद्र हो, त्रुटि हो, छेद हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, देश कालार्ह, देश काल परिस्थिति के अनुसार, वस्तुतः किसी वस्तु को लेते हुए, किसी व्यक्ति को लेते हुए, किसी के साथ किसी समय कोई त्रुटि हो जाए, और जितने भी सारी त्रुटियां हैं इस पूरे संसार में, सर्वम करोति यश निश्चिद्रम, उन सारी त्रुटियों को निश्चिद्रम दूर कौन कर सकता है? अनुसंकीर्तनम तव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यहां पर ये अनुसंकीर्तनम किसी देवता का नहीं, दुर्गा काली का नहीं बोल रहे हो, विष्णु उनका संकीर्तन। अब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं और भक्ति का जो स्टैंडर्ड है वो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, और हम देखते हैं जो प्रगत भक्त हैं वो भी कैसे भक्ति एकदम निपुणता से कर पाते हैं, परंतु शुरू शुरू में बहुत त्रुटियां होती हैं। जैसे हमें याद है बहुत वर्ष पहले आईआईटी में हम जन्माष्टमी मना रहे थे, तो उस समय भक्ति रसामृत महाराज, जो समय देवामृत प्रभु, उनको बुलाया गया था। तो अब सभी नए नए थोड़े भक्त थे स्टूडेंट्स, तो वो सोचे कि ड्रामा करते हैं। तो ड्रामा जन्माष्टमी के लिए किया चाणूर मुष्टिक वध। सोचो भक्ति रसामृत महाराज के सामने चाणूर मुष्टिक वध। तो अभी हमारे कुछ थोड़े नए नए विद्यार्थी, एक चाणूर बना, एक मुष्टिक बना, एक कंस भी है ना, तो कंस नहीं तो सब आयोजित किया था, तो कंस वहां बैठा हुआ है और फिर चाणूर और मुष्टिक का युद्ध चल रहा है। तो ऐसा घमासान युद्ध, और वो जैसे कि उनको तो थोड़ा हिंदी फिल्मों का बैकग्राउंड था, तो डिशुम डिशुम आवाज निकाल रहे थे। तो अब भागवत से, भागवत का ये प्रसंग वो वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं और उसमें फिर डिशुम डिशुम चालू हो गया। अच्छा हुआ क्या कि ड्रामा से पहले भगवान का अभिषेक था, तो अब सब तैयार थे, पूरा कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहने हुए। तो कंस जो बना था वो आके पूछता है कि मैं अभिषेक कर सकता हूं? तो उसको इच्छा थी अभिषेक करने की, तो हाँ कर सकते। तो यहां पर लाइन में कंस खड़ा है अभिषेक करने के लिए। ये केवल हरे कृष्ण आंदोलन में ही हो सकता है। तो अब उनको कहा गया था कि यू हैव टू परफॉर्म द ड्रामा ऑफ किलिंग ऑफ चाणूर एंड मुष्टिक। तो अब कंस बैठा है और चाणूर मुष्टिक को डिशुम डिशुम करके मार डाला, और जैसे चाणूर मुष्टिक मर गए सब खड़े हुए चले गए। अब उसके बाद कंस का वध होना है ना, वो तो महत्वपूर्ण है, चाणूर मुष्टिक तो कुछ नहीं थे, वो तो प्यादे थे। तो उठ के चले गए। तो फिर जाके पूछा, सभी वेट कर रहे थे कि हो सकता है अभी वापस आए, थोड़ा एकदम ड्रामेटिक एंट्री होगा कंस का और कृष्ण मारेंगे फिर। तो सब वेट कर रहे हैं, सब चले गए, हो गया। और ये लोग कोई ताली नहीं बजाए, कोई हरि बोल नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। और ये लोग अपना सब कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम निकाल दिए और देख रहे हैं पर्दे से क्या हो रहा है, आगे प्रवचन शुरू क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर गौरांग प्रभु वो जाके अंदर देखे, बोले यार कंस, किलिंग ऑफ कंस क्या हुआ? बोला आपने बोला किलिंग ऑफ चाणूर मुष्टिक। बोला अरे उसके उसके साथ कंस भी तो मरता है ना। बोला अभी आपने बताया नहीं, हमने तो कोई डायलॉग वायलॉग याद नहीं किया उसके। तो फिर दयामृत प्रभु वो बाहर लेक्चर से पहले वो भी पूछते हैं, व्हाट अबाउट कंसा? तो फिर गौरांग प्रभु बोले नेक्स्ट ईयर, अगले साल मारेंगे उनको। तो हम देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं भगवान कि किसी न किसी प्रकार को भगवान के प्रसन्न करने के, लेकिन हमारी तरफ से त्रुटियां उसमें होती रहती हैं। इसलिए एक कोई मटेरियल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, किसी भौतिक संस्था को चलाने के लिए ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इसकी आवश्यकता पड़ती है। परंतु आध्यात्मिक संस्था को चलाने के लिए कृपा शक्ति, हां ज्ञान और क्रिया शक्ति का महत्व है, परंतु आध्यात्मिक संस्था को चलाने के लिए जब तक कृपा शक्ति नहीं है, तब तक चाहे जितना भी ज्ञान हम लगा लें, कितनी भी क्रियाएं हम कर लें, कृपा शक्ति नहीं है भगवान की, तो कोई सफलता नहीं होगी। उसी प्रकार से हमारी साधना भक्ति में भी, साधना भक्ति में भी हां ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की आवश्यकता है, परंतु जब तक कृपा शक्ति नहीं है भगवान की, तब तक वो ज्ञान और क्रिया हमें भगवत धाम नहीं पहुंचा पाएगी। तो इसलिए त्रुटि रक्षा, इतनी सारी त्रुटियां हमारी होती हैं, इसलिए अर्चविग्रह की आराधना करने के पश्चात अलग अलग मंत्र हैं। वो अलग अलग मंत्र ये हैं कि मैंने आपकी आराधना में, अर्च विग्रह की सेवा में कितनी सारी त्रुटियां की होंगी, आप कृपा कर मैं गिन भी नहीं सकता, गिना भी नहीं सकता, आप जानते हो भगवान, तो आप सब कुछ माफ कर दो। श्रील प्रभुपाद जब ऑस्ट्रेलिया में थे तो उन्होंने राधा गोपीनाथ को प्रस्थापित किया, और राधा गोपीनाथ को प्रस्थापित करने के पश्चात वो राधा गोपीनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहे, आई एम हैंडिंग यू अंडर द केयर ऑफ दीज हिप्पीज, यू प्लीज टेक केयर ऑफ देम, क्योंकि उस समय इनको तो कुछ पता नहीं था कि राधा कृष्ण की आराधना कैसे करनी चाहिए, उनके अर्च विग्रह की आराधना, इतना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है परंतु प्रभुपाद की कृपा से उनको ये सब कुछ मिला। जैसे अमेरिका के एक सेंटर में प्रभुपाद ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सर्वप्रथम जब प्रस्थापित किया तो प्रभुपाद दर्शन के लिए गए, तो दर्शन के लिए गए तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ऑल्टर पर नहीं है। तो प्रभुपाद ने पूछा, अरे कल तो इनको इंस्टॉल किया, कहां गए ऑल्टर से? तो बोले कि हम उनको थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए ले गए आज। क्या मॉर्निंग वॉक? बोला हाँ, हमने सोचा आज मौसम अच्छा हो रहा है, थोड़ा धूप निकली हुई है, तो भगवान को थोड़ा मॉर्निंग वॉक कराते हैं, तो हम ऑल्टर से उठा के भगवान को मॉर्निंग वॉक के लिए लेके। तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं 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 नहीं, जगन्नाथ जी केवल रथ यात्रा के समय साल में एक बार बाहर आते हैं ऑल्टर से, ऐसे आप अर्च विग्रह को बाहर नहीं निकाल सकते ऑल्टर से। तो ऐसी त्रुटियों के साथ श्रील प्रभुपाद उनको कृष्ण भक्ति, वो भी शुद्ध कृष्ण भक्ति दे रहे थे। एक मंदिर में उन्होंने रिवॉल्विंग ऑल्टर रखा था, जैसे कोई थिएटर में होता ना रिवॉल्विंग स्टेज, तो उन्होंने रिवॉल्विंग ऑल्टर बनाया था। प्रभुपाद को पता नहीं था, तो प्रभुपाद उस मंदिर में गए, प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, प्रभुपाद ने दंडवत किया, खड़े हुए तो कृष्ण बलराम। प्रभुपाद, अरे पहले प्रभुपाद को आश्चर्यचकित हुआ कि क्या ये मेरी दृष्टि ऐसी हो गई कि अचानक जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण बलराम का दर्शन दे। तो प्रभुपाद ने फिर सोचा कि हो सकता है, तो प्रभुपाद वापस दंडवत किए, वापस खड़े हुए तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, ये क्या चल रहा है? तो फिर उन्होंने बताया कि हमने रिवॉल्विंग ऑर्डर, तो पीछे कृष्ण बलराम, आगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, फिर ऐसे, क्योंकि जगह कम थी ऑल्टर के लिए, जगह कम थी इसलिए उन्होंने वो रिवॉल्विंग ऑल्टर बना दिया। तो सोचिए कलयुग में डीटी वर्शिप क्या क्या तरीकों से लोग करते हैं। तो अभी जैसे पाश्चात्य देश में विशेष रूप से हमारी जो वैदिक संस्कृति है उसके प्रति वो लोग बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक, और ज्यादा ध्यान देने की वजह से वो कई बार थोड़ा गड़बड़ भी कर देते हैं। जैसे मैं लिथुएनिया में था, लिथुएनिया, तो वहां पर मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, तो वो पूछे कि आपके लिए कुछ आपको लंच वगैरह बना के दें, भूख तो लग रही थी, और पूछ रहे थे बनाए, हमने कहा हाँ अगर कुछ बना सकते हो। तो उनके पास किचन में ना तो दाल, ना कोई सब्जी, ना आटा, कुछ भी नहीं, खाली चावल था। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये चावल कोई पका दीजिए आप, और उसमें कुछ टमाटर का तड़का डाल दीजिए। तड़का, मतलब उनकी भाषा में मैंने कहा छौंस छौंस, वो तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं समझते क्या होता है ये। उन्होंने आज तक कभी छौंक वौंक दिया ही नहीं किसी सब्जी में, छौंक जानते नहीं छौंक होता क्या है। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप काट वाट के रखो, क्लास के बाद मैं आता हूं मैं बना लूंगा। तो फिर मैं जब किचन में गया तो वहां पर वो सब तैयारी करके रखे थे, और वीडियो कैमरा। सोचिए मैं केवल चावल में छौंक लगा रहा हूं, उसका वीडियो कैमरा चल रहा है। तो वीडियो कैमरा के साथ और एक व्यक्ति नोट्स लिख रहा है पूरा कि कितना अभी इसमें इतना तेल डाला। फिर मैंने पूछा कि जीरा है? जीरा, क्यूमिन सीड्स, क्यूमिन सीड्स। तो उनके पास जीरा था तो जीरा लेके आया, तो मैं जीरा डाल रहा था तो उसने कितना पीसेस, तो ये मुझे कितना पीसेस जीरा। तो ये वहां की स्थिति। सोचिए ऐसे व्यक्तियों को श्रील प्रभुपाद ने हमारी वैदिक संस्कृति, वैदिक पद्धति, ये सब कुछ सिखाया वहां पे लोगों को। तो भगवान जानते हैं कि यदि कोई प्रामाणिक है तो कितनी भी त्रुटियां उसके अंदर हो भगवान वो दुर्लक्ष कर देते हैं। इसलिए प्रामाणिकता बहुत आवश्यक है, चाहे वो हमारा अज्ञान हो या हमारी त्रुटियां हो। इसके पश्चात अब अनर्थ रक्षा। अनर्थ रक्षा में उदाहरण है इंद्रदेव, गोवर्धन लीला, कि गोवर्धन लीला गोवर्धन भगवान ने धारण किया प्रमुख कारण था, हालांकि ब्रजवासियों के साथ भगवान लीला करना चाहते थे, परंतु विशेष रूप से भगवान इंद्र का मान नीचा करना चाहते थे कि नख के ऊपर गोवर्धन धार्यो, इंद्र का मान कम किया भगवान ने गोवर्धन धारण कर जो इतने अभिमानी हो गए थे इंद्र, तो उनका वो अनर्थ कम करने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण किया। जैसे हम नरसिंह भगवान की लीला श्रवण कर रहे थे उस दिन, तो पंगजांग्री प्रभु वो एक बार बता रहे थे कि मायापुर के हमारे नरसिंह देव, उनका दर्शन एक माता जी कर रही थी और वो नरसिंह भगवान के जो नाखून थे, महान नाखून, वो चाहती थी उनकी पूजा करना। सोचिए बहुत डेंजरस ऑफरिंग मांगा उन्होंने कि नरसिंह भगवान के महान नाखून, तो उनको मिले महान नाखून। तो रात्रि में उनको सपना आया कि नरसिंह भगवान अपने नाखूनों से उनके कलेजे के अंदर अपना हाथ डाले, कलेजा समझते ना, हृदय के अंदर नरसिंह भगवान तव कर कमल अपना हाथ डाले और उनके कलेजे से एकदम ऐसे सम स्टिकी ब्लैक सब्सटेंस बाहर निकाला ऐसे, और नरसिंह भगवान ने कहा ये आपके अनर्थ, और फेंक दिया उन्होंने। बोलो नरसिंह भगवान की जय। वो जो भी काला काला जो कुछ था ऐसा नरसिंह भगवान अपने हाथ से निकाल के फेंक दिए। तो भगवान हमारे अनर्थों की रक्षा इस प्रकार से भी कर सकते। अब कई बार देखते हैं कि कई भक्त वो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भक्ति के साथ कुछ मान सम्मान की अपेक्षा रखते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य, वो श्रील प्रभुपाद के मुख से अपना गुणगान सुनना चाहते थे। अब शुद्ध भक्त के सामने यदि कोई प्रदर्शन कर रहा है किसी चीज का और अपने अहंकार का वर्धन करना चाहता है तो एक शुद्ध भक्त पहचान जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य, सभी भक्त बैठे हुए थे प्रभुपाद के सामने, वो आए और प्रभुपाद को एक भेंट दिए और एकदम दंडवत करते हुए जोरदार मंगलाचरण गाते हुए, प्रभुपाद योर हम्बल मीनियल मीक सर्वेंट इज ऑफरिंग यू दिस गिफ्ट। तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा, व्हाट इज इट? तो उन्होंने श्रीमद् भागवत के लिए कवर बनाया था और पहली दफा इस कॉन में किसी ने भागवत की पुस्तक के लिए कवर बनाया था, जैसे हमारी भागवत की पुस्तक के ऊपर कवर रहता है वैसे। तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज दिस? तो कहे प्रभुपाद, दिस इज कवर फॉर भागवतम, यू मे समटाइम्स कीप द भागवतम ऑन द ग्राउंड। आई नेवर कीप भागवतम ऑन द ग्राउंड। हु सेज भागवतम शुड बी केप्ट ऑन द ग्राउंड? नो वन कीप्स भागवतम ऑन द ग्राउंड। मे बी यू कीप भागवतम ऑन द ग्राउंड, यू नीड दैट कवर, यू कीप इट। तो वो तो सोच रहे थे यहां ग्लोरिफिकेशन का सेशन होने वाला था, ये तो पूरा क्रूसिफिक्शन हो गया। और फिर उनकी थैली में एक आम था, प्रभुपाद ने कहा, व्हाट इज दैट? मैंगो, यस, गिव दिस, इज प्रैक्टिकल ऑफरिंग, गिव दिस। तो हालांकि उस स्थिति में प्रभुपाद जानते थे कि वो मान सम्मान की अपेक्षा से आए थे। तो प्रभुपाद वो अनर्थ की रक्षा कर रहे थे, वो एक अनर्थ है, ये नाम प्रतिष्ठा ये एक अनर्थ है, तो इसकी सुरक्षा शुद्ध भक्त और भगवान करते हैं। जैसे कि ब्रह्म विमोहन लीला में बहुत ही सुंदर ये सिद्धांत बताया गया है कि ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने गौओं को, बछड़ों को और उसके पश्चात ग्वालों को चुराया, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बछड़ों को और गायों को चुरा लिया। अब सभी ग्वाल बाल कृष्ण के साथ बैठे हुए, ये जो चित्र है कृष्ण के साथ ऐसे सब बैठे हुए हैं और सभी प्रसाद ले रहे हैं, और अचानक प्रसाद लेते समय एक ग्वाल बाल देखता है कि बछड़े और गाय वो चरते हुए पता नहीं कहां चले गए, दिखाई नहीं दे रहे। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हर समय उनकी नजर उन गायों पर और बछड़ों पर रहती, और वो गाय और बछड़े कभी विचलित होके, भ्रमित होके कहीं चरने नहीं चले जाते। परंतु इस दिन क्योंकि ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, तो एक ग्वाल बाल ने जब देखा तो तुरंत वो सब ग्वाल बाल को चौकन्ना करता है कि अरे छोड़ो ये सब खाना पीना, हमारे बछड़े और गाय वो गुम हो गए। तो उस समय कृष्ण सभी ग्वाल बालों से कहते, नहीं आप लोग सब बैठो, आप लोग सब प्रसाद खाना जारी रखो, मैं ढूंढ कर लाता हूं। तो हमारे आचार्य बताते हैं इसके तात्पर्य में कि गायों का नाम है गो, और हमारी इंद्रियों को भी गो कहा जाता है। सो समटाइम्स फॉर अ साधका हिज सेंसेस वॉन्डर जस्ट लाइक द काउज हैड वॉन्डर्ड अवे, बट कृष्णा सेज नो, यू कंटिन्यू योर डिवोशनल सर्विस, आई विल फेच योर सेंसेस बैक। जैसे कि भगवान ने इन ग्वाल बालों को कहा कि तुम्हारे गो चले गए होंगे, परंतु तुम यहां पर बैठकर भक्ति करते रहो, ये मेरा उत्तरदायित्व है, मैं जाकर तुम्हारी इंद्रियों को पकड़कर फिर से लाऊंगा। दैट इज द फेथ विच अ साधका हैज इन कृष्णा, कि यदि मेरी इंद्रियां विचलित होके, भ्रमित होके चरने के लिए चले जाएं इस भौतिक संसार में, परंतु यदि मैं भक्ति करता रहूं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये भगवान का आश्वासन है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं तुम्हारे इंद्रियों को, गो को मैं पकड़ कर लेके आऊंगा, इसलिए भगवान का नाम है गोविंद, वो जो हमारी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं और उनको आनंद देते हैं। तो भगवान हर समय तत्पर रहते हैं हमारे अनर्थों से हमारी रक्षा करने के लिए। तो हमें कभी ये नहीं, विवश नहीं हो जाना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अनर्थ तो कभी दूर हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, हमें केवल हमारी भक्ति करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और भगवान का यह आश्वासन हम ब्रह्म विमोहन लीला से सीखते हैं। इसके पश्चात व्यसन रक्षा, और इसमें उदाहरण है नलकुवर और मणिग्रीव। नलकुवर और मणिग्रीव ये कुबेर के दो पुत्र, और व्यसन में लत, इस प्रकार का व्यसन इन्होंने किया हुआ था कि इनकी जो आंखें थी वो उस मदिरा के द्वारा, मदिर मदोरंगित वो घूम रही थी आंखें, इतने नशे में थे ये लोग, और उन स्त्रियों के साथ वो नग्न स्थान कर रहे थे। तो ऐसे व्यसन में से नारद मुनि ने उन्हें बाहर निकाला और उन्हें अर्जुन वृक्ष बनाकर उन्हें कहां पर, गोकुल महावन में। तो अब नलकुवर और मणिग्रीव ये दोनों ये अपने व्यसनी जीवन से बाहर आए क्योंकि नारद मुनि ने उनकी स्मृति बनाए रखी। उनको जब दोनों वृक्ष बना दिया तो नारद मुनि ने उनकी स्मृति बनाए रखी कि तुम याद करो कि तुम कितने व्यसनी थे और इसके वजह से आज तुम्हें ये दंड मिला है। जैसे कि मैं यूरोप में था तो वहां पर एक भक्त एक ये कथा सुना रहे थे कि ये बता रहे थे कि ये एक दूसरे डिवोटी कैसे आए हरे कृष्ण आंदोलन में। तो ये एक टेररिस्ट थे पीएलओ में, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, एक आतंकवादी थे और वहां से तंग आकर वो ग्रीस गए। ग्रीस एक देश का नाम है, ग्रीस गए वो। और वहां पर वो एक पब में, पब जानते हैं आप, मदिरालय, तो वहां मदिरालय में वो बस मदिरा पिए जा रहे थे। और उन्होंने मदिरा इतनी पी ली, उसके बाद में सब कुछ घूम रहा था उनके सामने। तो उस मदिरालय में, उस पब में बैक टू गॉडेड मैगजीन पड़ा हुआ था, सोचिए। तो उन्होंने वो बैक टू गॉडेड मैगजीन उठाया और उसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र और भक्तों के चित्र ये सब देखने लगा तो और भी ज्यादा अचरज हुआ उसे कि क्या है, कौन है ये लोग। और उसके बगल में एक और पी रहा था तो उसने कहा कि मैं जानता हूं इनको, आई नो दीज पीपल, दे आर द हरे कृष्णास, एंड इफ यू रियली वॉन्ट ट्रू सेटिस्फैक्शन एंड पीस यू शुड गो टू देम। ये भी घूम रहा था, इसके भी सब कुछ, इसने भी दो तीन पैग अंदर ले लिया था। तो ये उस अवस्था में इसको भागवतम क्लास दे रहा है कि ये लोग बहुत अच्छे। तो ये पूछते तुमको कैसे मालूम, मतलब मैं भी एक बार उनके साथ ही था। तो ये व्यक्ति, ये जो आतंकवादी था, इसकी क्लास सुनकर, जिसके हाथ में भागवत नहीं था, दारू की बोतल थी, इसकी बात सुनकर वो मंदिर वहां पर आए ग्रीस के, और आज वो दीक्षित भक्त है। तो देखिए भगवान व्यसन रक्षा कैसे करते हैं। ये दोनों व्यसनी, परंतु किसी न किसी प्रकार से भगवान की चर्चा हुई, भगवत चर्चा पब में, हाथ में दारू की बोतल, लेकिन भगवत चर्चा किसी ने ये न कहने प्रकार न हो गई और ये भक्त बन गए। तो इसलिए नलकुवर और मणिग्रीव का उदाहरण है कि कैसे व्यसन से इनकी रक्षा कर कर भगवान ने शुद्ध भक्ति, और इसलिए यही जो लोक गीत गाते हुए मदिरा में धुत, ये फिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि अब हमारा एकमेव कर्तव्य यही है कि हम नित्य रूप से आपका स्मरण करते रहेंगे और आपका कीर्तन करते रहेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में शत्रु रक्षा, कि भगवान शत्रुओं से रक्षा कैसे करते हैं। जैसे द्रौपदी की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की दुशासन जैसे शत्रु से। और इसलिए जब तक द्रौपदी वो स्वयं प्रयास कर रही थी तब तक भगवान रुके हुए थे, परंतु जब द्रौपदी निस्सहाय भाव से अपने दोनों हाथ ऊपर कर हे गोविंद हे गोपाल भगवान का नाम पुकारने लगी, तो भगवान तुरंत द्रौपदी की रक्षा दुशासन से की। और एक और उदाहरण शत्रु रक्षा में है, गजेंद्र की रक्षा भगवान ने कैसे की। अब देखिए गजेंद्र, ये पहले महाराज इंद्रदुम्न थे और इनसे एक त्रुटि हो गई। त्रुटि क्या, अगस्त्य मुनि वो गुजर रहे थे रास्ते पे और ये ध्यान में थे इंद्रदुम्न महाराज, और अपनी समाधस्थ अवस्था में ये अगस्त्य मुनि का सत्कार नहीं कर सके। अब देखिए अनजाने में इनसे त्रुटि हुई और उस त्रुटि के वजह से इन्हें हाथी का शरीर मिल गया, परंतु यह बताया गया है कि हाथी के शरीर में जब उस ग्राहन ने पकड़ लिया, उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया इंद्रदुम्न महाराज को अब गजेंद्र के रूप में, तो वो भगवान की सुरक्षा थी, भगवान उसके द्वारा अपना दर्शन दिए, उस मगरमच्छ का उद्धार किया और गजेंद्र का उद्धार किया। और यह कहा गया है कि क्योंकि उनसे एक त्रुटि हुई तो भगवान मानो कि वो त्रुटि करवाए जिसके द्वारा उनको गजेंद्र जैसा शरीर मिले। तो ऐसा नहीं कि भगवान केवल जो मनुष्य शरीर में है उसी की रक्षा करेंगे शत्रु पक्ष से। कोई किसी भी शरीर में हो, चाहे गजेंद्र के शरीर में, किसी हाथी के शरीर में भी क्यों ना हो, भगवान श्री कृष्ण उसकी प्रामाणिकता देखते हैं। और इसलिए गजेंद्र अब तक केवल इंद्रिय भोग में लगा हुआ था, उसकी जो गौ, उसकी इंद्रियां सब जगह पर विचलित भ्रमण कर रही थी, परंतु जब उस मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उस अवस्था में जब उसने वो कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया और प्रार्थना भगवान से करता है, तब भगवान वहां पर तुरंत प्रकट होते हैं और इस शत्रु से गजेंद्र की रक्षा करते हैं। अब रावण का उदाहरण रामायण में दिया गया है कि भगवान श्री राम रावण के एक एक सर को काट रहे थे इस प्रतीक्षा में कि अगला सर जो आएगा कम से कम वो तो मेरा नमस्कार करेगा। इसलिए भगवान एक एक सर को काट रहे थे। पूछा जा रहा था, विभीषण ने पूछा कि आप उसके हृदय को क्यों नहीं भेद रहे, ये सर को क्यों काट रहे हैं, उसका सर पैदा होते जा रहा है एक एक नया। तो भगवान ने विभीषण से कहा कि मैं अब भी एक बहाना ढूंढ रहा हूं रावण का उद्धार करने के लिए, कि मैंने ये सर काटा तो मैं इस प्रतीक्षा में हूं कि अगला सर जो नया आएगा कम से कम वो नया सर तो मुझे नमस्कार करेगा, कम से कम वो नया सर तो झुकेगा मेरे सामने। इसलिए कहा गया है व्हाट रावणा कुड नॉट अचीव बाय कटिंग ऑफ हिज हेड्स विभीषण अचीव बाय बाइंग डाउन हिज हेड, वन ओनली वन हेड। भगवान ने विभीषण को ऐसी सुरक्षा दी कि भगवान ने विभीषण का राज्याभिषेक उसी समय कर दिया जब विभीषण वहां उनको शरणागत होने आए कि हां मैं तुम्हें लंका नरेश घोषित करता हूं। और उस समय भगवान रो रहे थे, भगवान श्री राम रो रहे थे जब उन्होंने विभीषण को लंका का नरेश बनाया, लंका का राजा बनाया। भगवान रो रहे थे कि मैंने विभीषण जो मुझे शरणागत हुआ, मैंने विभीषण को एक राजा बना दिया, मैंने सुग्रीव को राजा बनाया, लेकिन मैं एक व्यक्ति को राजा नहीं बना सका और वो जटायु, मैं जटायु को राजा नहीं बना सका। उस समय जब भगवान विभीषण को राजा बना रहे थे तो भगवान रो रहे थे, परंतु इन सब से ज्यादा जटायु को क्या मिला, भगवान स्वयं अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किए और अवश्य ही जटायु तो भगवान के धाम पहुंचे। अब प्रभु श्री राम के संदर्भ में बताया गया है कि कोई यदि एक बार भी भगवान को नमस्कार करता है, अब देखिए श्रील प्रभुपाद इस संदर्भ में कहते हैं, यहां पर हमारे भक्त हैं जो दंडवत कर रहे हैं भगवान के धाम को, तो प्रभुपाद कहते हैं कि स्वेच्छा से भगवान को दंडवत कर लो, नहीं तो दंडवत तो कराएंगे ही वो किसी न किसी प्रकार से। इसलिए जब हम प्रभु श्री राम की चर्चा करते हैं रामायण से, तो प्रभु श्री राम ने वो जो प्रसिद्ध श्लोक क्या कहा, सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मि इति याचते अभयम् तु सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम् मम। प्रभु श्री राम का ये व्रत कि जो एक दफा भी मेरे समक्ष आकर हाथ जोड़कर वो कहता है तव अस्मि। इसलिए श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य वो बहुत ही सुंदर टीका में, अपनी टीका में सुंदर तरीके से कहते हैं कि प्रभु श्री राम को इस श्लोक बोलने के पश्चात एक नया नाम मिला। प्रभु श्री राम का एक नया नाम, बहुत ही सुंदर नाम है, प्रथमांजलि किंकर। ये प्रभु श्री राम का एक बहुत अनोखा नाम है, प्रथमांजलि किंकर। ये नाम प्रभु श्री राम को मिला प्रभु श्री राम ने कहा कि कोई मेरा भक्त यदि एक बार प्रथम बार भी आकर अपनी अंजलि से मुझे नमस्कार करता है, प्रथम अंजलि, मैं उसका किंकर बन जाता हूं। तो भगवान को देखिए ये नाम मिला है, प्रथमांजलि किंकर। तो यदि भगवान उस भक्त के किंकर बन सकते हैं या ये व्रत ले रहे हैं कि जो एक दफा मेरे समक्ष आकर कहता है कि हे भगवान मैं आज से आपको समर्पित हो रहा हूं, तो अभयम तो सर्वदा तस्मै, एकदा नहीं सर्वदा, सर्वदा भगवान उसको निर्भयता सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वो कृपालु हैं कि वो हमें कह रहे हैं कि हाँ हाथ जोड़कर तो आओ ही, परंतु हाथ जोड़ने के पश्चात दोनों हाथ ऊपर कर कर अपनी पूर्ण शरणागति दिखाओ। हाथ जब ऊपर करते हैं तो पूर्ण शरणागति व्यक्ति दिखाता है ना, कोई बंदूक सामने तान दे तो क्या कहता है सबसे पहले, हैंड्स अप, सरेंडर। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु वो सारे अवतारों के मर्म को जानते हुए उन्होंने कहा कि अपने दोनों हाथ को ऊपर कर कर शरणागत होकर भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परंतु प्रामाणिकता से, और जैसे कि भगवान ने कहा कि जब हम भगवान के समक्ष ये कहेंगे कि हाँ मैं आपका हूं, अर्थात केवल कहना नहीं है, हमारे जीवन में हमें उसे उतारना है, दर्शाना है कि हमारे कार्यों से हम भगवान को समर्पित हों और कहें कि हाँ आई एम योर प्रॉपर्टी कृष्णा। और इसलिए भगवान को ये नया नाम उस वजह से मिल जाता है, प्रथमांजलि किंकर। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गौर निताय की, शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।